पर स्थान ग्रहण करें। पूनम दीदी जी से भी अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के पूर्व अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठकर उस परमात्मा पिता की स्मृति में रहेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस सेशन का हमारा विषय है निर्णय क्षमता को बढ़ाना। इस विषय को स्पष्ट करने के पूर्व मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन हमारी विद्वानगण महानुभावों का पुष्पों से और बैस से अभिनंदन करें। आदरणीय प्राता पुनीत कुमार जी, आदरणीय पुनीय पूनम देवी जी, आदरणीय हम सब कर्तव्य से सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जीवन की दशा और सफलता ये हमारे निर्णयों पर निर्भर होती है। सही निर्णय हमें आत्मविश्वास, शांति और सफलता देता है। आत्म जागरूकता ये हमें सही समय पर सही दिशा चुनने की शक्ति देती है। कहा जाता है जब मन स्थिर हो तो राहें साफ नजर आती है, संशय के द्वंद हटे तो मंजिल पास नजर आती है। निर्णय वही सशक्त होता है जो मूल्यों से जुड़ा हुआ रहता है। तो आज के इस विषय को अपने अनुभवों के द्वारा हमारे बीच में रखने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी, आप जोनल कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर विंग के जयपुर से हैं, आप जयपुर में ही सब जोन संचालिका है। आपका बचपन या यूं कहो कि आपने पहले से ही जन्म के पूर्व ही इस ज्ञान को माँ के गर्भ के अंदर ही प्राप्त किया, तो आपकी आयु से बढ़कर आपका ज्ञान का मार्ग है और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ज्ञान को अपने जीवन में, मूल्यों को अपने जीवन में लाकर अपने आप को एक गुलदस्ते का स्वरूप दिया है। तो आपके मुखारविंद से, आपके अनुभवों से आज के विषय को आप हमारे सामने प्रस्तुत करें आदरणीय पूनम दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। हम सब शिव परमात्मा की दैवी संताने कल से प्रशासक प्रभात का जो उद्घाटन हुआ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और आप विभिन्न विषयों पर सुन रहे हैं। अभी जो आपके सामने विषय रखा जा रहा है, डिसीजन मेकिंग, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में प्रॉपर डिसीजन हो जाए तो जीवन सुगम, सुंदर, सफल हो जाता है। और जीवन में कुछ गलत निर्णय ले लिए जाते हैं तो दुख, संकट, समस्याएं आने लग जाती है। इसलिए इस निर्णय शक्ति का महत्व पर्सनल लाइफ में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी है और रिलेशंस में भी है। हमारे संबंध मधुरों सुखी रहें, यहां भी हमारा चुनाव मायने रखता है। प्रोफेशन में भी हमारा निर्णय, हम क्या लाइन लेते हैं जो हमारे मन के अनुकूल हो, जिसमें हमको खुशी प्राप्त हो और व्यक्तिगत जीवन में भी अनेक बातें आती हैं, तो ये निर्णय हमारे जीवन में सही होना चाहिए और राइट डिसीजन प्रेसाइज हो, हमारा एक्यूरेट हो, इसके लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम पोजीशन पर आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है, अधिकार भी रहते, तो हम कौन सही निर्णय लेने की विधि आनी चाहिए। तो एक्यूरेट डिसीजन के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉलेज हो, जिसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, उसकी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी, नॉलेज होगी तो हम निर्णय ले पाएंगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ विस्टम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन के एज में हैं, इतना हमें गूगल से ज्ञान मिल जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, माइंड इतना हमारा भरपूर ज्ञान से, परंतु विस्टम नहीं है तो भी हम उस ज्ञान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नॉलेज के साथ साथ विस्टम बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं। क्या करें, क्या नहीं करें, हम अनिश्चय की स्थिति में आते हैं। अब ये निर्णय लेने वाली शक्ति कौन है? विस्टम किस में है? नॉलेज तो बाहर से आती है, अनेक प्रकार की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते, लेकिन विस्टम ये आत्मा का पार्ट है। अपने सुबह के सेशन में सुना, मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग, आत्मा मास्टर, शरीर द्वारा कार्य करने वाली आत्मा, शरीर उसका इंस्ट्रूमेंट है। अब आत्मा से क्या है ये भी हमने जाना। आत्मा की तीन शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, हैबिट्स। माइंड है थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, फीलिंग, माइंड में इमोशंस होते हैं, अनेक प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, जब मन में कोई गलत विचार आता है तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे वैल्यूज के अगेंस्ट है, सोशल नॉर्म्स के विरुद्ध है। लेकिन मन में डिजायर प्रबल है, इच्छा बहुत तीव्र गति से उठ रही है, मन में भावनाएं बहुत ज्वार ले के रूप में आ रही हैं, तो बुद्धि की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, बुद्धि की आवाज को दबा देते हैं, जिसको कहते कॉन्शियस किल करते। फिर अंदर एक द्वंद होता है, मन कहता है करूं, बहुत जबरदस्त इच्छा होती, लेकिन बुद्धि जिसमें ज्ञान है, बुद्धि जो विवेक रखती है, निर्णय शक्ति है, वो चेक करती है कि ये राइट है रॉन्ग है। अब इसमें अगर मन की इच्छा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो बुद्धि के आवाज को दबा देगा और वो विचार कर्म में आ जाएगा। और बुद्धि अगर शक्तिशाली, विवेक, निर्णय शक्ति है बुद्धि में, निर्णय ठीक है, विवेक के आधार से निर्णय है, तो बुद्धि मन की गलत इच्छाओं पर ब्रेक लगाती, अंकुश लगाती, चेक करती, उनको दिशा देती। सप्रेशन नहीं है, सब्लिमेशन है। ज्ञान विवेक के आधार से हम मन की दिशा को राइट पाथ पर लाते हैं। इस प्रकार मन और बुद्धि में एक संघर्ष होता है। कई बार मन विजयी हो जाता है, बुद्धि हार जाती, और कई बार विवेक शक्तिशाली होने के कारण, स्ट्रांग है विवेक, विस्टम है, तो वो मन की गलत इच्छा को कंट्रोल करता है। एक बार आप देखेंगे मन में कोई विचार आया और हम विवेक बुद्धि का प्रयोग इतना नहीं कर पाए, निर्णय शक्ति काम नहीं की, करें नहीं करें, तो वो विचार कर्म में आता है। पहली बार आया, फिर सफलता मिल गई, दूसरी बार मन में इच्छा पैदा होती है, फिर हमारा विवेक निर्णय शक्ति हमें चेक करती है, लेकिन फिर हम उस मन की चाहना को पूर्ण कर लेते हैं। सफलता मिल जाती है तो हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। तीसरी बार, चौथी बार, पांच बार तक तो बुद्धि हमारी, विवेक हमें चेक करता है, निर्णय हम करते, परंतु बार बार होने से हमारा वो आदत संस्कार बन जाता है और हम कर जाते हैं। विवेक रोकना बंद कर देता है, विस्टम काम नहीं करती और निर्णय भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब हमें क्या करना है निर्णय शक्ति को, विस्टम को डेवलप करना होगा। जब विवेक शक्ति जागृत होगी, दिव्य बुद्धि बनेगी, निर्णय शक्ति प्रखर होगी, तीव्र होगी, तो वो राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन ले पाएगी और मन को सही दिशा दे पाएगी। मन और बुद्धि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों के डायरेक्शन यदि डिफरेंट हो जाते हैं, मन अलग दिशा में, बुद्धि अलग दिशा में, तो अंदर कंफ्यूजन है, अंदर बहुत केओस है, बहुत उलझन है, मन डामाडोल होने लगता है। तो इसलिए डिसीजन पावर को शार्प करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक आत्मिक ज्ञान, अध्यात्म आत्मा से जुड़ा है, सेल्फ की नॉलेज, सेल्फ की वैल्यूज का ज्ञान, इनर पावर का ज्ञान, इनर स्ट्रेंथ डेवलप की जाए, आत्मज्ञान से मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के गुणों का ज्ञान, आत्मा के श्रेष्ठ कर्म क्या हैं उनका ज्ञान, आत्मा के संस्कार दिव्य कैसे हों उनका ज्ञान, फिर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की पहचान, आत्मा का परमात्मा से रिलेशन बनाना, मन और बुद्धि को सुप्रीम से कनेक्ट करना, और जब कनेक्शन होता है तो उनकी पावर को, उनके गुणों को हम एडॉप्ट करते चले जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, परमात्मा ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर के ज्ञान को जितना लेते जाते, ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो हमारी विस्टम डेवलप होती है, दिव्य बुद्धि बनती है। बुद्धि तो है, कहते हैं ज्ञान तो है, ज्ञानी है लेकिन गुणी नहीं है, उस ज्ञान को अंदर समाया नहीं है। तो जब विवेक जागृत होता है तो विवेक हमें सही मार्ग पर ले जाता है। इसी को गीता में इस रूप में कहा, मन घोड़ा है, भक्त है, बेलगाम घोड़ा, विषय वासनाओं में, इंद्रिय लालसाओं में, सुखों में, भौतिक चीजों में दौड़ता है, दौड़ता है। लेकिन मन घोड़े को लगाम दो, लगाम हाथ में है और सवार कौन है? आत्मा, मैं आत्मा। मन घोड़े को आप लगाम देंगे तो मन भटकना बंद हो जाएगा और मन सही दिशा में जाएगा, वो हमें सफलता की मंजिल पर पहुंचा देगा। घोड़ा बेलगाम है तो गिरा भी देगा, भटका भी देगा, पटक भी देगा और लूलुहान भी कर देगा, लेकिन हम लगाम हाथ में रखें, आत्मा सवार है ना, तो बुद्धि की लगाम श्रीमत श्रेष्ठ परमात्मा के ज्ञान को जितना हम लेते जाते, निरंतर हम डोज लें, जैसे बॉडी को हम डोज देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट हो तो बॉडी स्ट्रांग होगी। इसी तरह मन को भी ज्ञान का भोजन, प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज की जाए, मनन चिंतन, रोज 10 मिनट भी हम ये स्पिरिचुअल डाइट लें और मेंटल एक्सरसाइज करें तो हमारी विस्टम स्ट्रांग, दिव्य बुद्धि हो और हमारी निर्णय शक्ति प्रखर होगी और उस आधार से हम सही मार्ग पर चल पाएंगे। तो हम सब चाहते हैं कि मन की चंचलता, भटकाव खत्म हो और हम कंट्रोलिंग पावर इतनी बिल्डअप करें, अपने ऊपर हमारा कंट्रोल, उसके लिए ये मेथड है। तो नॉलेज, नॉलेज के साथ साथ विस्टम, और विस्टम नॉलेज थ्योरिटिकल है और विजडम प्रैक्टिकल चीज जो लाइफ में हमें अप्लाई करनी होती है। दूसरी बात, ये आत्मज्ञान जब सेल्फ अवेयरनेस बिल्डअप होती है, मैं आत्मा शरीर इंस्ट्रूमेंट और जो कुछ मैंने गेन किया, पद पोजीशन, स्टेटस, वेल्थ, ये शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं, शरीर के साथ है, तो मैं अहंकार किस बात का करूं? मैं तो आत्मा हूं और आत्मा की वेल्थ, आत्मा के वर्चूज, ओरिजिनल क्वालिटीज, आत्मा के गुण प्रेम, आत्मा का गुण शांति, आत्मा का गुण पवित्रता, आत्मा का गुण ज्ञान, आत्मा का गुण शक्ति, खुशी, ये मेरा खजाना, मेरी वेल्थ है। वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमें साधन संपन्न तो बनाती हैं, लेकिन खुशी और संतुष्टि आत्मा के इन ओरिजिनल गुणों को डेवलप करने से मिलती है। खुशी साधनों में नहीं है, चीजों में नहीं है, खुशी हमारी इंटरनल स्टेज है। तो हम बाहर की वेल्थ को बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो इनर हमारी क्वालिटीज, हमारी स्ट्रेंथ, वेल्थ है, उसको हम इतना डेवलप करने का प्रयास नहीं करते। तो जब हम अपनी 7 कोर क्वालिटीज, गुणों को, आंतरिक शक्तियों को स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन से डेवलप करेंगे, तो हम खुशी संतुष्टता का अनुभव करेंगे और माइंड क्लीन, क्लियर माइंड हमारा बिल्कुल शार्प हो जाएगा। जितना मन में बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं, देह की, अभिमान की बातें, अभिमान चाहे पद का, पोजीशन का, वेल्थ का, रूप का, जाति का, रंग का, अनेक अभिमान है। अभिमान से क्रोध आता है, अहम को चोट पहुंचती है तो क्रोध आ जाता है। अभिमानी व्यक्ति जब अपने से ऊपर वाले को देखता है तो उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, और अपने से नीचे वालों को देखता है तो और उसका अभिमान बढ़ता है। तो जितना हम अहंकार में, क्रोध में रहते, तो आप बताइए क्रोध में हमारा निर्णय कैसा होगा? जब हम एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो मान सम्मान बहुत मिलता है, यस सर, जी हजूर, जितना सुनते हैं उतना हमारा ईगो हाई होता जाता है। लेकिन कहीं किसी के द्वारा हम हर्ट हुए, अपमान फील हुआ, उतने ही हम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आके गलत निर्णय ले लेते हैं, उसका नुकसान भी कर जाते हैं और अपने अहम की तुष्टि के लिए बदला भी लेने लग जाते हैं। पावर है ना, तो पावर के कारण ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी है और रिवेंज की फीलिंग, बदला लेने की भावना आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक रिटायर्ड ऑफिसर जो कलेक्टर रहे, उन्होंने शॉप पर कुछ खरीदा और वहां उनको लगा चीटिंग हुई है खरीदारी में, तो उन्होंने अपना वही रौद्र रूप दिखा दिया, तुम जानते नहीं हो मैं कलेक्टर रहा हूं, अभी तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। क्यों? आप उसको प्यार से भी समझा सकते हैं, आप उस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ईगो अब नहीं है पोस्ट पे, रहे हैं कलेक्टर, लेकिन वो कॉन्शियस बिल्डअप हो गई कि मैं कलेक्टर, और कहते मैं जेल भिजवा दूंगा, पर रिटायर्ड की कौन सुनता है, कौन जेल भिजवाने में मदद देगा। तो इस प्रकार हमारा जो एटीट्यूड बन जाता है अहंकार में आके, बदला लेने की भावना, और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, धमकाना, चिल्लाना, उनको क्रोध में आके बोलना, ये सब हमारा बिहेवियर हमें सम्मान से, प्रेम से दूर कर देता है। बाद में आप क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन करें, पूरी लाइफ में आपने किया, लेकिन कितना आपने प्यार पाया, कितना आपने सम्मान पाया, कितना आपने सबका सहयोग पाया, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो अपने विवेक को हम सदा जागृत रखें और इन बुराइयों से दूर हो, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये जो हमारे व्यवहार को भी दूषित करते हैं, और व्यवहार दूषित होता है जब हमारी सोच में बुराई आती, हमारा निर्णय गलत हो जाता है, विस्टम काम नहीं करती, तो हम इस प्रकार की गलतियां कर जाते हैं ना। तो कभी भी क्रोध में आके आप निर्णय मत लो, वो निर्णय आप भावावेश में है रॉन्ग हो जाता है। आप दुख में है, दुख में निर्णय मत लो, दुख में आपका विवेक काम नहीं करता, क्रोध में विवेक काम नहीं करता। आप जब बहुत खुश हैं तब भी निर्णय मत लो, बहुत खुशी में भी हम ज्यादा ही भावुक होकर कुछ कर देते हैं, और बाद में पछताते हैं कि बैलेंस नहीं रहा, हमने गलत डिसीजन ले लिया और गलत हो गया। तो ये हमारी आंतरिक कमजोरियां, साथ साथ लोभ में जब आ जाते हैं तो लोभ में आने पर भी हमारा निर्णय गलत हो जाता है, कार्य को लोभ प्रभावित करता है। कहते हैं ना, मछली को तालाब में फंसाना है तो आप दाना डालो, फिर जाल डाल दो, मछलियां दाने के लालच में जाल में एकत्रित हो जाएंगी, और आप उसको निकाल के मार्केट में बेच देते हैं, लोभ है ना, दाना डाला, विवेक काम नहीं किया। हमको भी कितने प्रलोभन मिलते हैं इस कार्य में, इस सेवा में जब आते हैं, प्रशासन की है ये सेवा का क्षेत्र, लेकिन हम प्रलोभन में भी आ जाते, लालच में भी आ जाते, अनेक प्रकार के हमको दाने मिलते हैं और हम विवेक का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता है, शुरू में छोटी सी रिश्वत, बढ़ते बढ़ते करोड़ों की हेराफेरी जो हमारे कैरेक्टर पर दाग लगा देती है, मिलावट, भ्रष्टाचार, ये सब बुराइयां आ जाती। उस समय हम निर्णय नहीं ले पाते कि ये मेरे लिए नुकसानकारक है, समाज के लिए है, मेरा डिसीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका भला हो, मेरा भला नहीं, मेरी अहम की तुष्टि नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मुझे जन कल्याण की सीट मिली है और ये सेवा की सीट है, इससे मुझे सेवा करनी है, दुआएं लेनी है, दुआएं कमानी है, तो मेरा निर्णय भी प्रॉपर सबके हित में हो। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें निर्णय लेने में ध्यान देना होगा, और ये सोल कॉन्शियस होने से, मेडिटेशन से, गॉड कॉन्शियस होने से हम इन क्वालिटीज को बढ़ा सकते हैं। साथ साथ दूरदर्शिता भी बहुत जरूरी है। वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारा लाभ है, वर्तमान में हमारी योजना सफल हो रही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा? कई बार ऐसे कार्य होते हैं, हम वर्तमान टेम्परेरी गेन के लिए, टेम्परेरी प्रॉफिट के लिए कर लेते हैं, लेकिन दूर का नहीं सोच पाते कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। पुल बनाया, सड़कें बनाई, थोड़ी घटिया सामग्री डाल दी, प्रेजेंट में ठीक है, पुल काम करेगा, सड़क काम करेगी, लेकिन जब बहुत हैवी रेन्स होंगी, भयंकर बारिश बह जाएगा, और जब ऐसा नुकसान होता है तो उन लोगों को पकड़ा जाता है जिन्होंने ऐसा काम किया। तो हमेशा दूरदर्शी होकर हम निर्णय लें, आदि मध्यंत सोच के करें, और अपने निर्णय में फर्मनेस चाहिए। कई बार टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड हो जाता है, बहुतों से राय ली, बहुतों के आइडियाज आए, टू मेनी, जैसे कहते कुक, रसोई में भी जब बहुत सारे लोग अपनी राय देने लग जाते हैं, नहीं ऐसे डालो, ये बनाओ, ऐसे करो, तो वो भोजन भी स्पॉइल हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, अपना सेल्फ एस्टीम बिल्डअप हो, स्वाभिमान, और अपने विवेक से जब हम निर्णय लेंगे तो हम कईयों के राय नहीं लेके कॉन्फिडेंस से, फोकस होके निर्णय ले पाएंगे। तो क्यों नहीं हो पाता है? मेन प्रॉब्लम क्या आती है? ईगो की, या तो ओवर कॉन्फिडेंस, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, या फियर कि कहीं हमारा निर्णय गलत नहीं हो जाए। फाइल को सरकाते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर नहीं, क्यों? डर है ना, कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं। तो फियर जो है, ये भी हमें प्रॉपर डिसीजन लेने में बाधा पैदा करता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से, ज्ञान योग के आधार से हम फियर पे विजय प्राप्त करते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, निर्भय पवित्रता की शक्ति से निर्भयता की शक्ति, सच्चाई, ट्रुथ एंड जस्टिस जीवन में जब अडॉप्ट करते, सिद्धांतों की पालना, सत्य की पालना, नियमों पे चलते हैं तो निर्भय है, कोई भय नहीं है, और हम अपने फील्ड में विकास करते हैं, फील्ड में सुख सबको देते हैं। इसके साथ साथ हम नो कहना सीखें। नो नहीं कह पाते हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है। आप इतना वर्कलोड लेते जा रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, फैमिली में है, चाहे वर्क प्लेस पे है, चाहे सोशल लाइफ में है, नो कहना सीखो, और उतना ही करो जितनी आपकी एनर्जी काम करे, जितना आपकी इनर स्ट्रेंथ हो। तो हम अपने माइंड को कूल काम रखेंगे, और कूल काम पीसफुल है तो डिसीजन भी राइट है। भागते रहें, दौड़ते रहें, क्या सही निर्णय हो पाएगा, सही कार्य हो पाएगा। दौड़ते दौड़ते खाना भी नहीं खाया जाता, भागते भागते जीवन भी थक जाता है। इसलिए कुछ देर, कुछ समय निकालो, ठहरो, साइलेंस पावर को एडॉप्ट करो और साइलेंस पावर से इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें, तो हम इफेक्टिव हो जाते हैं, हमारा निर्णय भी प्रॉपर होता है और लाइफ के हर फील्ड में, चाहे सोशल, पर्सनल, फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, मैनेजमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हम सही रीति से जीवन चला लेते। ये कुछ विचार मैंने आपके आगे रखे। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत सहज सरल भाषा में निर्णय शक्ति को बढ़ाने की तरकीबें सुनाई। आपने एक प्रकार से हमें बताया कि आज हमारा मन कितना बिजीएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है, कई संकल्प एक साथ आते रहते हैं, तो जब संकल्पों की भीड़ नहीं होगी, भीतर का प्रकाश होगा तो वह हमें राह दिखाता है। और भीतर का प्रकाश कैसे बढ़े उसकी भी विधि आपने बहुत सुंदर शब्दों में बयां की। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय प्राता पुनीत कुमार जी, आप विद्यानगर सिंगरौली से पधारे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस हम सबके बीच में रखेंगे। उस सेशन के बाद फिर हमारे साथ आदरणीय मोहिनी दीदी जी मिलेंगी, तो हम ब्राता जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस हम सबके बीच में रखें।
धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। मंचासीन आदरणीय पूनम दीदी, आदरणीय सरला दीदी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी आत्मजन, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे दीदी ने बताया, मेरा नाम पुनीत कुमार है, मैं यहाँ सिंगरौली जिले से आया हूँ। सिंगरौली जिसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आज काफी लोग सिंगरौली से आ चुके हैं, तो कोल का अथाह भंडार है, पानी है, दोनों बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए। साथ के साथ मैं जिस पावर प्लांट में काम कर रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ इंडिया विंध्याचल जो है एनटीपीसी का प्लांट, उसके साथ काम कर रहा हूं। अब क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लांट है, एनटीपीसी का फ्लैगशिप प्लांट है, तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और मुझे कहा गया है मुझे अपने अनुभव शेयर करने हैं, तो सबसे बड़ा अनुभव मेरा यह है कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ टच में कैसे आया। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ टच में आया शिवानी दीदी के YouTube वीडियोस से, और उसमें भी सबसे ज्यादा सोल रिफ्लेक्शंस, जो उनका एक पूरा सीरीज है वीडियोस का विद सुरेश ओबराय जी, जिस तरह से दीदी जी एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स, ह्यूमन इमोशंस, बिहेवियर, उससे कहीं ना कहीं मैं टच में आया और फिर धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ और जुड़ता चला गया। हालांकि अभी भी टोटली मैं उतना अच्छे से नहीं जुड़ा हूं, मेरी युगल है वो काफी अच्छे से रोज राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हैं, तो मेरे अनुभव वहीं से शुरू होते हैं। मुझे जहां भी मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार में गया हूं, बहुत स्नेह मिला है। मैं यहां इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आया हूं, लेकिन अपने तपोवन कॉम्प्लेक्स जो है सिंगरौली में, वहां पर जाता हूं, भोपाल जाता हूं, बहुत स्नेह मिलता है। और एक्सपीरियंस के बाद में बात करूं, सबसे लेटेस्ट अनुभव जो मैं बताऊं, आज जो मैं कुछ बोलने वाला था, जो कुछ बात करने वाला था, पूनम दीदी ने सभी के सॉल्यूशंस अपने लेक्चर में ले लिए हैं। तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस मेडिटेशन में कुछ नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे की बात बिना कहे बिना जाने, मैं शायद पहली बार दीदी जी के साथ बैठा हूं, शायद ही यकीनन, और उन्होंने अपने आप जान लिया। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा यूज यही है कि हम एक दूसरे के हृदय की बात जान सकते हैं बिना किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन के। और उसका एज ए प्रबंधन में जो सबसे बड़ा योगदान है कि जो सुबह भी बात हो रही थी, टीम वर्क को जानने में, मैंने अपने पर्सनल अनुभव में इसको कैसे लेके आया कि जैसे दीदी जी बता रही थी, मेरे को भी क्रोध बहुत ज्यादा आता था मेडिटेशन के बाद। अभी ये है कि जब क्रोध आना शुरू होता है, मुझे पता लग जाता है कि क्रोध आना वाला है। पहले मुझे पता ही नहीं लगता था क्रोध आने के बाद तक कि क्रोध आ चुका है। मेरे को ये बिलीव ही नहीं होता था कि मैं क्रोध कर चुका हूं, बल्कि क्या उसको मैं कभी एक्नॉलेज भी नहीं करता था। नाउ आई कैन रियलाइज दैट माई एंगर इज बिल्डिंग, और वहीं पे फिर उसको सब्लिमेट, उसको वहीं मैनेज करना आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा। दूसरा क्या होता है कि जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, जागृति आ जाती है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि आप अपने टीम मेट्स को भी समझने लग जाते हो, आप अपने बॉस को समझने लग जाते हो। अभी मैं मिडिल मैनेजमेंट में हूं, मेरे जूनियर्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, और काफी लोग मुझे जोवियल तरीके से कहते भी हैं कि इतनी जल्दी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो बात वही है कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कि तैयारी करनी पड़ेगी एक लंबी रेस में जाने के लिए। और इसके लिए भी मुझे जो प्रेरणा मिली लंबी रेस में जाने के लिए, वो एक अपने तपोवन कॉम्प्लेक्स में मिली। वहां मैं टच में आया श्री हरीश दुहान जी के, जो आजकल SECL के CMD हैं। एट दैट टाइम वो GM थे वहां पर। मैंने देखा कि नॉर्मली एक फिगर होती है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जो लोग जुड़े हैं वो काफी शालीन रहते हैं, ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं रखते। बट जब मैंने दुहान सर को देखा, वो GM थे, देन ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ सब्सिडियरी ऑफ CIL, एंड देन ही बिकेम द CMD ऑफ SECL। और उनका वो जो एलिवेशन था वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत फास्ट था। तो समझ में आया कि मेडिटेशन आपको हर जगह अपनी एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है, अपने आप को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक और जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूं अपना, जो ट्रैफिक कंट्रोल का यहां पे एक बात होती है, शायद मैंने अपने सारे टीममेट्स को एक बार सबको समझाया हुआ है, और मैं काफी खुद भी जब भी मैं फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे काम आसान हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। आप, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आप कोई ऐप यूज करें ना करें, जब आपको लगे कि हां मुझे थम जाना चाहिए, आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, एक मिनट, उतनी देर तक भी आप थम गए तो नेक्स्ट जो काम होता है वो बहुत आसान होता है। मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूं, शायद पहली बार मैं किसी को बता रहा हूं, मेरी युगल बैठियां हंस रही हैं, शायद मैंने शायद उन्हें भी कभी नहीं बताया, लेकिन ये रियली में मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप थोड़ा सा थम जाएंगे, आप फिर से अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर लेंगे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे। और इसको भी शायद जो मेरे को प्रेरणा मिली, एक बार मैं शिवानी दीदी को सुन रहा था, तो उन्होंने एक दादी जानकी का उदाहरण दिया था। वो शायद 104 साल की उम्र में US से यहां आती हैं, इंडिया लैंड करती हैं अहमदाबाद, देन उनको मुंबई जाना था, वो मुंबई की फ्लाइट पकड़ रही थी। किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप 104 साल की उम्र में इतनी एनर्जी आपके साथ आती कहां, आपके पास आती कहां से है? तो उनका सिर्फ तीन शब्द का आंसर था, डोंट वेस्ट इट। सिंपल सी चीज है, हमने अपनी एनर्जी को अभी सारी व्यर्थ की चीजों में लगा रखा है, और उसी की वजह से हम अपने आप को मिसमैनेज करके बैठ जाते हैं। जब उस एनर्जी को हम वेस्टेज में जाने से रोक देंगे, तो अपने आप को हम एक अच्छे कामों में, एक जो मेरे को काम दिया गया है, जो मुझे करना है, उन कामों में अच्छे से यूज कर पाते हैं। और एक लेटेस्ट 15 दिन पुरानी आपको एक कहानी इसके माध्यम से केस स्टडी टाइप से बताता हूं सर। मेरे एक सीनियर भी ट्रांसफर हो गए हैं मेरे बगल के प्लांट में ही, शक्तिनगर प्लांट में। उनको कुछ काम करवाना था, फर्नीचर से रिलेटेड कुछ काम था। तो वहां पे हमने कई मेरे सीनियर्स ने कई लोगों से संपर्क किया, कारपेंटर से, कि ये काम कर दीजिए। दो तीन लोगों ने मना किया, दो तीन लोगों ने हाँ किया, लेकिन कोई काम करने नहीं आया। तो अपने तपोवन कॉम्प्लेक्स में कमल भाई जी आते हैं, वो फर्नीचर का काम भी करते हैं। उनसे जब मैंने पहले भी बात की थी उसके बाद दोबारा बात करी, जब उन्होंने कहा कि हमें नीड है, आप देख लीजिए, कमल भाई जी का घर बहुत दूर है, करीब 26-27 किलोमीटर दूर है जिस स्थिति पर उन्हें आना था, जिस जगह पर उन्हें काम करना था, और बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो इनिशियली ही रिफ्यूज, बट जब हमने बार बार कहा तो वो मान गए। अब उनके अकेले के बस का काम नहीं था, वो फर्नीचर का काम था, तो उन्होंने अपने एक साथी को साथ में ले लिया। कमल भाई जी डेडिकेटेड राजयोगी मेडिटेटर हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, क्लास में भी रेगुलरली आते हैं वहां तपोवन में, और जो उनके साथी हैं वो आम जनता हैं, वो भी एक अच्छे कारपेंटर हैं। कमल भाई जी अभी काम कम कर रहे हैं क्योंकि अपने स्वास्थ्य फिजिकल कंडीशंस की वजह से, तो उन्होंने हमें कहा कि आप रॉ मटेरियल ले आइए, काम हम कर देंगे। तो सर रॉ मटेरियल लेके पहुंचे, मतलब डिलीवरी हुई, दोनों लोग आते हैं, कमल भाई जी और उनके दोस्त, रॉ मटेरियल देखते हैं, तो जो उनके दोस्त हैं जो दूसरे अच्छे से काम करने वाले थे, लीड करने वाले थे, वो पहले ही बोलते हैं ये तो हमने मंगाया ही नहीं, ये तुम क्या ले आए, अब तो काम कुछ होगा ही नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं हो सकता इस पर। वहीं कमल भाई जी बोलते हैं, एक देखिएगा फर्क, देखिएगा मेडिटेशन का, एक मेडिटेटर क्या बोलते हैं, देखते हैं काम हो सकता है, शुरू करते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम थी बट सोल्यूशन ओरिएंटेशन कहां से आया, क्योंकि वो एक अलग ऊर्जा के साथ लगातार कनेक्टेड है, तो उनके पास तुरंत तक देखते हैं, शुरू करते हैं, काम हो जाएगा, लगता है काम हो जाएगा, हम कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, काम बढ़ता रहा, काम करीब 6 दिन का था, 5वें दिन में ऐसा लग रहा था कि काम खत्म हो जाएगा, बट जो उनके साथी थे उन्होंने कहा नहीं आज काम नहीं खत्म हो सकता, उन्होंने काफी लंबा काम खींचा, आज खत्म नहीं हो सकता। अगेन एक मेडिटेटर का पर्सपेक्टिव देखिए, अगेन प्रॉब्लम आई है, अब क्या करना है। उन्होंने कहा अच्छा एक बार थोड़ा सा जोर लगाते हैं, लेट्स सी होगा ना होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अगेन उनका अप्रोच था कि मुझे काम कंप्लीट करना, फिनिश करना, मैनेज करना है। तो जिस व्यक्ति ने काम छोड़ दिया था, छोड़ा मतलब कि कम कर दिया था, अभी दोनों ने मिलकर फटाफट काम शुरू उठाया और उसी दिन खत्म कर लिया। और कमल भाई जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अगर ये थोड़ी देर पहले कर लेते तो काम एक घंटे पहले ही खत्म हो जाता। तो मेडिटेशन का उस एनर्जी के साथ जोड़ने का एक्सपीरियंस ये है कि आपको एक फलक्रम मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है कि आपके साथ कोई बर्डन नहीं है, आप किसी आपके लिए काम एक बर्डन नहीं रह जाएगा, आप हल्के हल्के क्षणों में काम करते चले जाते हैं। यही मेरे कुछ अनुभव थे, और मुझे इस मंच देने के लिए ब्रह्म कुमारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
भ्राता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेडिटेशन के द्वारा अनुभव क्या क्या किया वो सबके सामने रखा। मैं समझती हूँ कई भाई बहने हैं जिनको मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारे अनुभव आए होंगे। समय की सीमा भी रहती है इसलिए हम सबका सुन नहीं सकते, परंतु जितनों का आपने सुना इस बात को हमने महसूस किया है कि परमात्म शक्ति के द्वारा हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो मिलता ही है, साथ साथ आसानी से उन बातों को हम पार कर पाते हैं। मैं हमारी आदरणीय पूनम दीदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे आदरणीय भ्राता जी का शॉल पहनाकर अभिनंदन करें, सम्मान करें। मंचासीन हमारे महानुभावों का, वक्ताओं का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या